सिपा साहबा पाकिस्तान लीडर थे उनके साथ उसी गाड़ी में, जिस गाड़ी में ये जा रहे थे, मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब। लुधियानवी साहब इनके साथ हैं जी गाड़ी में, और प्रॉब्ली मेरे ख्याल में भूल गए राणा सनाउल्ला साहब के एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ये लीडर है। आपको एक थोड़ी सी तस्वीर दिखा दूँ जी, छोटी सी जो हमने इकट्ठी की है, ये आपके सामने जी मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब, राणा सनाउल्ला साहब बराबर में खड़े हैं जी। इंतखाबी कैंपेन है जी ये, और प्रॉब्ली भूल गए मेरे ख्याल में राणा सनाउल्ला साहब के वो वजीरे कानून पंजाब भी हैं। अब हमने कोशिश की है जी कि राणा सनाउल्ला साहब को भी बुलाए, इस पर गुफ्तगू करनी जरूरी है, क्योंकि एक स्टैंड है गवर्नमेंट का कि जी जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ हमारा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। गो के मुख्तलिफ नामों से नाम चेंज करके ये ऑर्गेनाइजेशन काम भी करती हैं, बट देन अगेन जब भी गवर्नमेंट के नॉलेज में ऐसी चीज आती है तो इनको फिर बैन कर दिया। बट इन दिस पर्टिकुलर केस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर टुडे, वजीर कानून पंजाब राणा सनाउल्ला साहब और सिपा साहबा के लीडर मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब बराबर में खड़े हैं, क्यों? एक सवालिया निशान है। और उन्हीं मदरसों में जाते हैं राणा सनाउल्ला साहब जो कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन के मदरसे, ये क्या चीज इंडिकेट करते हैं? इस पर गुफ्तगू करना बहुत जरूरी है जी। मेरे साथ लाइन पे मौजूद है शेख वकास साहब की, शेख वकास एमएनए है, मुस्लिम लीग क्यू से इनका ताल्लुक है जी, और स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद है जी अमीन खटक साहब, जनरल सेक्रेटरी एएनपी सिंध जी। बहुत शुक्रिया जी आप तशरीफ लाए। मैं शेख वकास साहब से थोड़ा शुरू करता हूँ जी, फिर आपकी इनपुट भी चाहिए होगी इस पे जी। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम राम साहब,
कैसे हैं आप जी?
हाँ मेहरबानी, शुक्रिया जी।
ये राणा सनाउल्ला साहब से आपकी मुलाकात हुई थी वहाँ पे?
हाँ नहीं जी, बदकिस्मती से मेरी मुलाकात तो नहीं हो सकी राणा साहब, क्योंकि जो है बैन ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा मिलता है, तो हम जैसे आदमियों को तो मिलना शायद वो मुनासिब नहीं समझता है।
अच्छा अच्छा, मतलब आप भी बैन हो जाए तो फिर आपसे मिल लेंगे?
मेरे ख्याल में अगर मैं बैन हो जाऊं तो शायद उसके बाद मुझे भी वो पब्लिकली डिफेंड करना शुरू कर लेंगे।
अच्छा, ये क्या, इसको कैसे लेंगे? आपका भी ताल्लुक तकरीबन उसी हलके से है जी, और ये हलका तो नहीं है, PP82 तो आपका हलका नहीं है, बट देन अगेन तकरीबन वही बन जाता है एरिया जी। इसको कैसे लिया जाएगा इंटरनेशनली और नेशनली?
इंटरनेशनली देखिए जी, राणा साहब जो वॉर ऑन टेरर में हमारा जो स्टैंड है बड़े अरसे से, जिसको कई हुकूमतें जो है वो लेके चल रही हैं, और बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग की नून की भी जो क्यादत है वो भी, आपको पता है कई सिक्योरिटी रेजोल्यूशन जो नेशनल असेंबली में हुई हैं उनके सिग्नेटरीज भी हैं, कई इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसके ऊपर, जिससे मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है वो इत्तफाक भी करती है, सिग्नेटरीज भी है, और हमेशा बड़ी अच्छी बात की है मुस्लिम लीग उनकी लीडरशिप ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एज फॉर एज नेशनल असेंबली इज कंसर्न। और मगर इस दौरान कई जगहों से आवाजें उठती रही कि शायद कोई ऐसा नेक्सस मौजूद है जो इन एक्सट्रीमिस्ट जमातों के दरमियान और शायद इस जमात के दरमियान मौजूद है, जिसका कभी पब्लिक एक्नॉलेजमेंट नहीं हुई, पब्लिक सबूत नहीं आया, और बड़े एहतियात बरती गई हमेशा कि इस किस्म की कोई हरकत ना हो। मगर एक अजीब वाकया हुआ, राणा साहब मोहतरम है, हमारे लिए काबिल इज्जत है, क्योंकि हमारे वो
राणा साहब को डिस्टिंग्विश कर दे, किस राणा साहब की बात?
मैं राणा सनाउल्ला साहब की बात कर रहा हूँ, आप तो है ही है हमारे मोहतरम है, मैं राणा सनाउल्ला साहब की बात कर रहा हूँ कि वो वजीर कानून होने के नाते हमारे लिए काबिल इज्जत है, मगर जो इकदाम उनका था झंग आके इस जमात के मरकज में जाना और वहां पुलिस की दस्तों की हिफाजत में जाना और फिर फोर्थ शेड्यूल के लोगों का इनके साथ होना और फिर एक उधम मच जाना शहर में और फिर पूरे शहर से इस रैली का मूव करना और फिर PP82 में जाके प्रोवोकेटिव किस्म के नारे वजीर कानून की मौजूदगी में लगना,
किस किस्म के नारे लगते रहे जी?
देखे जी, इसमें कई फिरकों को जो है वो इनफिडल करार दिया जाता रहा और कई ऐसे लोगों की रिहाई का मुतालबा किया जाता रहा जो कई अरसे से, सालों से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तहवील में है। मैं यहाँ सवाल राणा साहब सिर्फ ये पैदा होता है कि राणा सनाउल्ला साहब बहुत दफा छांग आए हैं, हमें कभी कोई एतराज नहीं हुआ, आए सौ बिस्मिल्ला, उनकी हुकूमत है, वो आए हैं यहाँ झंग पीपी 82 में कैंपेन करने, बहुत दफा आए सौ बिस्मिल्ला, ये उनका राइट बनता है, मगर जो हमें चीज चुभी है और वो किसी भी पार्टी लाइन से अबव है, उसमें किसी पार्टी के एजेंडे की बात नहीं है, और शायद इसीलिए जो है वो नून के बहुत सारे लीडरान कई टॉक शोज के ऊपर उन्होंने मेरी इस बात की और इवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में भी उन्होंने तायीद की है कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है। और वो ये है कि जब आप फोर्थ शेड्यूल में होते हैं तो फोर्थ शेड्यूल का मतलब ये होता है, राम साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं एक्सप्लेन करूं।
जी प्लीज जी प्लीज।
एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत फोर्थ शेड्यूल के लोग जो है वो अपना घर नहीं छोड़ सकते हैं, डीपीओ को बताना पड़ता है घर छोड़ने से पहले, वो ऐसी किसी जगह पे स्कूल या कॉलेज में जहां 21 साल से कम उम्र के लोग नहीं जा सकते हैं बगैर डीपीओ से इजाजत लिए, वो पब्लिक पार्क में नहीं जा सकते हैं, वो गार्डन में नहीं जा सकते हैं, वो पब्लिक अटेंडेंस नहीं कर सकते हैं, वो जलसे जुलूस या रैलियों में नहीं जा सकते हैं, वो जहां 10 लोग हों वहां पे नहीं खड़े हो सकते हैं, वो अपनी उस जमात का कोई झंडा नहीं लहरा सकते हैं, ये भी ऑफेंस है, 3 महीने से लेके 3 साल तक इसमें बाकायदा तौर पे कैद हो सकती है, जमा कराने पड़ते हैं गुड बिहेवियर के कि अगर हम वो गए तो वो बॉन्ड की वायलेशन होगी। मजे की बात तो ये है कि इसकी आगे ही 2 साल से ये बहस चल रही थी कि पंजाब में फोर्थ शेड्यूल की वायलेशन हो रही है, उसकी पाबंदी नहीं हो रही है, हुकूमत पता नहीं ये क्यों नहीं करवा रही, उसके ऊपर सतन जरीफी ये हुई कि जनाब राणा सनाउल्ला हमारे वजीर कानून मोहतरम जो है वो इन अशखास को उस जुलूस में फोर्थ शेड्यूल वाले लोगों की तादाद का तो कोई आप गिनती ही नहीं कर सकते जिसके साथ वो यहाँ से गए। अब आप मुझे ये बताएं कि एक लॉ मिनिस्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल है पूरे सूबे के लॉ एंड ऑर्डर के और पुलिस के, अगर वो खुद ऐसे लोगों को साथ लेके फिरे गए तो मेरे अजीज मुझे आप ये बताएं तो क्या होगा, क्या कोई डीआईजी या कोई डीपीओ या कोई एसएचओ या कोई डीएसपी इन लोगों के ऊपर कल हाथ डाल सकेगा। जुल्म ये हुआ कि जब ये आके चले गए तो उससे अगले दिन शहर में एक अजीब उद्यम मचाया गया, बांसुरियां निकाल के मोटरसाइकिलों की, नौजवानों ने असला डिस्प्ले किया, जगह जगह पे झंडों की तादाद डबल कर दी गई, शहरियों को परेशान किया गया, असले का नुमाइश की गई, लोगों को हरासा किया गया, बाकायदा गाड़ियों को गाड़ियां सीधी की गई, जो मुखालिफीन थे उनको डबल कैबिन सीधे कर दिए गए मारने के लिए।
अच्छा।
और उनकी प्रॉपर्टी के अंदर गाड़ियां घुसाई गई सिर्फ इसलिए कि जनाब उन्हें पता था कि हमारे साथ वजीर कानून और कानून हमारे साथ है। और उसके बाद जो उसका आउट फॉल आउट हुआ जिसका मैंने असेंबली तकरीर में भी खदशा मुझे था, वो आपने फैसला बाद में देखा राणा साहब के हल्के में क्या हुआ, एक जमात को इतनी शह दे दी गई कि दूसरी जमातों वाले बेचारे जो है वो मजबूर हुए, उसके बाद दफा 144 की फैसला बाद में वॉयलेशन की गई। मुझे और जुल्म सबसे बड़ा ये है जो मुझे राणा साहब से गला है, अगर मेरे अजीज कहीं ऑनलाइन है या कहीं मुझे सुन रहे हैं,
कोशिश हमने बहुत की थी उनको ऑनलाइन लेने की,
मुझे और मुझे सिर्फ उनसे ये गला है कि आज भी एक पट्टी चली कि 45,000 वोट लेने वाले शख्स को जो है वो कलदम नहीं कहा जा सकता या दहशतगर्द नहीं कहा जा सकता या खुदा ना खास्ता जो है उसको फोर्थ शेड्यूल में नहीं रखा जा सकता। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा राणा साहब, ये बड़ी मेरी मेजर स्टेटमेंट है इस प्रोग्राम में
जी,
और वो ये है कि फिर तो आप यूं करें कि आप अपनी पार्टियों को कहें कि मालाकंड में जो है वो कलम जमात और मौलाना फजलुल्लाह के लाखों वोट है, तो जाएं फिर आप अगले इलेक्शन के लिए उनसे अलायंस कर लें।
ठीक।
और दूसरी ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपको इतना ही शौक है उन लोगों को लेके चलने का तो उनपे जितनी एफआईआर कटी हुई है मौलाना पे वो सारी पंजाब में कटी हुई है, तो आप कम अज कम उनकी एफआईआर ही खारिज कर दें।
ठीक।
और अगर फोर्थ शेड्यूल में है और आपको उनको साथ लेके इतना शौक है तो कम से कम मौलाना की आप इतनी हेल्प तो करेंगे मौलाना को फिर फोर्थ शेड्यूल में से निकाल दें।
ठीक है।
मतलब अगर ये सारी चीजें हमने और आपने बतानी है, एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के आर्टिकल 11E, 11EE, 11EEE, 11GG, 11F, अगर आप उसको देख लें तो मेरे अजीज ये तो फिर जुल्म हुआ है पंजाब के साथ, ये जुल्म हुआ है झंग वालों के साथ, ये जुल्म किया है इन्होंने अपने साथ, ये जुल्म किया है इन्होंने मुस्लिम लीग की लीडरशिप के साथ, और मुस्लिम लीग की लीडरशिप को इन्होंने बैकफुट पे किया है, जो हमेशा मॉडरेशन का वो दावा करते रहे हैं और जगह जगह पे कहते रहे हैं कि वो मॉडरेट फोर्सेस के साथ है, राणा साहब ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा, और आज मुख्तलिफ फिरकों ने अपने मोबाइल से मैसेजेस देने शुरू कर दिए हैं कि आप नून वालों से दूर रहें। एक ऐसी जमात को एकदम कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया राणा साहब ने, जिसके जिसका कोई तुक नहीं था, जिसका कोई मामला नहीं था, और बार बार उन अशखास को टीवी पर डिफेंड करके ये कोई नून के लिए अच्छा वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि नून के साथ और हम सबके साथ जुल्म कर रहे हैं।
अच्छा, मैं इस पर एक चीज पूछना चाहूंगा जी आपसे, बिफोर आई गो टू अमीर खटक साहब, डू यू थिंक के सीट इतनी इम्पोर्टेंट हो चुकी है, बाय इलेक्शन इतने इम्पोर्टेंट हो चुके हैं पंजाब गवर्नमेंट के लिए कि वो सब चीजें भूल चुकी है?
देखिए, मुझे तो ऐसा ही लगता है, मुझे तो ये बड़ा वाजे नजर आता है, और मैंने असेंबली में भी यही कहा था कि चंद वोटों की खातिर अगर हम अपने मुल्क की सिक्योरिटी को दांव पे लगाएंगे या ऐसी जमातों को हम प्रमोट करेंगे, तो फिर कहां गया हमारा लव ऑफ द नेशन, एंड कहां गया नेशनल इंटरेस्ट, और कहां गई नेशनल सिक्योरिटी।